देखिए भाई आगे सबक वमिन हल इस्नादु इलैही हुआ बिर रफ़ई अत्फुन अल दुखूल इला अला मदखूलिही लिअन्नल मुतबादिरा मिन अद्दुखूल ज़िक्र फिल अव्वली अविल लुहूक बिल आखिरी वकिलाहुमा मुंतफियान फिल इस्नादी वकदा फिल इज़ाफ़ती वल मुराद बिही कौनु शैई मुस्नदन इलैही। गुज़श्ता सबक में हम इसम के खासे पढ़ रहे थे भाई। सबसे पहला खासा आपने पढ़ा वो उस पर लाम का दाखिल होना है यानी लामे तारीफ का दाखिल होना। दूसरा खासा है जर का दाखिल होना, जर का दाखिल होना। और फिर ये जर इसम के साथ खास क्यों है इसकी वजह साहिब जामी ने आपको बतलाई थी कि ये जो जर होता है ये असर है हर्फे जर का, और हर्फ जर सिर्फ इसम पर दाखिल होता है तो उसका असर भी सिर्फ किस पर जाहिर होगा, इसम पर ही जाहिर होगा भाई, इसम पर ही। और फिर ये जो हर्फ जर है कभी लफ्जों में होता है और कभी तकदीरन होता है। लफ्जों के अंदर हर्फ जर हो तो इसको इल्म नहव की इस्तिलाह में जार मजरूर कहते हैं, और तकदीरन जर हो तो इसको इजाफत कहते हैं यानी मुजाफ और मुजाफ इले बई, और ये इजाफत मानविया में होता है। मालूम हुआ हर्फ जर कभी लफ्जन होगा जैसे बिजईदिन, और कभी हर्फ जर तकदीरन होगा जैसे गुलाम उजैदिन, ये असल में क्या है गुलामोन ले जैदिन। मैंने आपको बतलाया था कि इजाफत दो किस्म पर है, एक इजाफत लफ्जिया है और एक इजाफत मानविया है। इजाफत लफ्जिया यह है कि सीगा सिफत का हो और मुजाफ हो अपने मामूल की तरफ यानी अपने फाइल या अपने मफूल की तरफ। आप जानते हैं कि फेल अपने फाइल को रफा देता है और मफूल को नसब, इसी तरह सिफत के सीगे जो हैं वो भी अपने फाइल को रफा देते हैं और अगर मफूल हो तो उसको नसब देते हैं। तो सीगा सिफत का हो और मुजाफ हो अपने मामूल की तरफ यानी अपने फाइल या अपने मफूल की तरफ, और सीगा सिफत का हो। और सिफत के सीगों में मैंने बतलाया तमाम सिफत के सीगे नहीं मुराद बल्कि इसमें फाइल, इसमें मफूल और सिफत मुशब्बा, यानी इसमें तफजील इसके अंदर दाखिल नहीं है भाई। तो इसमें फाइल या इसमें मफूल या सिफत मुशब्बा हो और ये अपने मामूल की तरफ यानी जिसमें ये अमल कर रहे थे, जिसको ये रफा या नसब दे रहे थे उसकी तरफ इनकी इजाफत कर दें तो सीगा सिफत का है और मुजाफ है अपने मामूल की तरफ, इसको कहते हैं इजाफत लफ्जी भाई। और इजाफत लफ्जी के अंदर कोई हर्फ जर मुकद्दर नहीं होता यानी यहां तकदीरन हर्फ जर की वजह से जर नहीं है बल्कि यही जो सिफत का सिगा है यही जर दे रहा है मुजाफिले को। जैसे इसकी मिसाल हमने की थी जैदुन जारिबुन अबूहु आमरन, तो जैदुन जारिबुन, यह जारिबुन सिगा है सिफत का, अबूहु है इसका, इसके लिए फाइल है, इसका मामूल है, इसमें यह अमल कर रहा है, और आमरन इसके लिए मफूल है, यह भी इसका मामूल है। तो इस सिफत के सीगे की इजाफत कर दो अपने फाइल या मफूल की तरफ, इसको क्या कहेंगे इजाफत लफ्जी कहेंगे। और मैंने यह भी बतलाया था कि इजाफत लफ्जी सिर्फ तख़फीफ का फायदा देती है यानी मुजाफ से तनवीन या कायम मकाम तनवीन गिर जाएगा। तनवीन वो तो आप जानते हैं भाई नूने साकिन का नाम है, और कायम मकाम तनवीन जो है वो नूने तस्निया और नूने जमा है। इजाफत से तनवीन भी गिरती है, नूने तस्निया अगर हो वो भी गिर जाता है, और अगर नूने जमा हो वो भी गिर जाता है। तो नूने तस्निया और नूने जमा इसको क्या कहते हैं कायम मकाम तनवीन, ये तनवीन के कायम मकाम है भाई। तो इजाफत लफ्जिया सिर्फ तख़फीफ का फायदा देती है यानी तनवीन गिर जाएगी मुजाफ से या कायम मकाम तनवीन गिर जाएगा और लफ्ज में तख़फीफ आ गई, उसकी अदायगी आसान हो गई क्योंकि एक हर्फ कम हो गया। तो इजाफत लफ्जिया के अलावा बाकी तमाम जो इजाफतें हैं वो इजाफत मानविया कहलाती हैं। इजाफत लफ्जिया क्या थी, सीगा सिफत का हो और मुजाफ हो अपने मामूल की तरफ। इसके अलावा जितनी किस्में हैं इजाफत की वो इजाफत मानविया हैं। उसमें वो सूरत भी आ गई कि सिरे से सिफत का सीगा ही ना हो, वो मुजाफ हो रहा है जैसे गुलाम उजैदीन, गुलाम सिफत का सीगा नहीं है तो यह इजाफत मानविया है। या सीगा तो सिफत का हो लेकिन अपने मामूल की तरफ मुजाफ ना हो, यानी अपने फाइल या मफूल की तरफ मुजाफ ना हो, जैसे करीमुल बलदी, करीमुल बलदी। अब करीम शरीफ वजन पर है, सिफत मुशब्बा है, और इसकी इजाफत अल बलद की तरफ हो रही है जो इसका मामूल नहीं है, यानी ना इसके लिए फाइल है और ना मफूल है। तो यह सीगा तो सिफत का है लेकिन अपने मामूल की तरफ मुजाफ नहीं, तो यह भी कौन सी इजाफत हुई? इजाफत मानविया। और इजाफत मानविया वो तारीफ या तख्सीस का फायदा देती है, यानी अगर नकिरा की इजाफत मारिफा की तरफ करेंगे तो वो नकिरा भी मारिफा बन जाएगा। गुलाम नकिरा था लेकिन जैद मारिफा की तरफ इजाफत की तो अब गुलाम उजैदीन में गुलाम क्या बन गया? मारिफा बन गया। और या ये तख्सीस का फायदा देगी अगर नकिरा की इजाफत नकिरा की तरफ कर दें, गुलाम रजुलिन, देखो गुलाम की इजाफत रजुल नकिरा की तरफ की तो ये अभी भी नकिरा है, पहले भी नकिरा था अब भी नकिरा, अलबत्ता इसमें तख्सीस आ गई। तख्सीस कहते हैं तकलील उल इश्तिराक, इश्तिराक कम हो गया, पहले ये ज्यादा अफराद पर सादिक आ रहा था अब कम अफराद पर सादिक आएगा। गुलाम रजुल जब कह दिया तो गुलाम इमरा सारे इससे खारिज हो गए, अब उन पर यह लफ्ज नहीं बोला जा सकता, तो यह इसमें तख्सीस आ गई। तो इजाफत लफ्जिया सिर्फ लफ्जों में तकफीफ का फायदा देती है जबकि इजाफत मानविया उसमें लफ्जों में भी तकफीफ आएगी। तनवीन और कायम मकाम तनवीन वो इजाफत मानविया में भी गिर जाते हैं, देखो गुलाम उजैदीन, गुलाम से तनवीन गिर गई, लेकिन लफ्जों में तकफीफ के साथ साथ बड़ा फायदा उसमें क्या है? तारीफ का या तख्सीस का फायदा होता है। और फिर मैंने यह बताया था कि इजाफत मानविया के अंदर या लाम मुकद्दर होता है या मीन या फी, अगर मुजाफिल है, मुजाफ के लिए जगह या जमाना हो तो वहां फिर फी मुकद्दर होगा क्योंकि फी जरफियत के लिए आता है। जैसे सलातुल लैली, अब देखो ये लैल जमाना है सलात के लिए, रात की नमाज, तो यहां फी मुकद्दर होगा, ये सलातुन फिल लैली। और अगर मुजाफिल है, मुजाफ के लिए जींस हो तो वहां मिन मुकद्दर होगा, जैसे खातमु फिज़तिन, चांदी की अंगूठी, मालूम हुआ ये चांदी अंगूठी के लिए जींस है तो ये यहां मिन मुकद्दर है, ऐ खातमुन मिन फिज़तिन। और अगर इसके अलावा हो, यानी मुजाफिल ना मुजाफ के लिए जर्फ हो और न ही जींस हो, फिर वहां लाम मुकद्दर होगा, जैसे गुलाम उजैदीन, ये जैद ना गुलाम के लिए जींस है और न ही जर्फ है तो यहां लाम मुकद्दर होगा, ऐ गुलामुन ले ज़ैदिन। तो मालूम हुआ ये जो इजाफत मानविया है इसके अंदर हर्फ जर मुकद्दर होता है जबकि इजाफत लफ्जिया के अंदर हर्फ जर मुकद्दर नहीं होता। तो इश्काल हुआ, इश्काल ये हुआ कि ऐ साहिब जामी आपकी दलील दावे के मुताबिक नहीं। दावा तो क्या था कि हर जर वो खासा है किसका? इसम का, जर इसम का खासा है, मालूम हुआ हर जर इसम पर आएगा, लेकिन आपने जो दलील जिक्र की वो तो सिर्फ उस जर की बात की जो हर्फे जर का असर हो। आपने कहा कि जर इसम का खासा है, क्यों? क्योंकि ये हर्फे जर की वजह से आता है और हर्फे जर चाहे लफ्जन हो या तकदीरन सिर्फ किस पर आता है? इसम पर। तो ये वाला जर जो इस हर्फे जर की वजह से आया ये भी इसम के साथ खास है। तो जर तो एक और किस्म का भी है जो हर्फ जर के बगैर आता है, जो इजाफत लफ्जिया में होता है, उसकी तो दलील आपने नहीं दी भाई। तो उसका भी फिर उन्होंने जवाब दिया था कि भाई इजाफत लफ्जिया और मानविया में से इजाफत मानविया वो असल है और लफ्जिया उसकी फरा है। जब इजाफत मानविया वाला जर इसम के साथ खास है तो फरा भी असल के मुआफिक होती है, तो उसका इजाफत लफ्जिया का जर भी इसम ही के साथ खास होना चाहिए, वरना तो लाजिम आएगा कि फरा असल के मुखालिफ हो गई, तो लाजिम आएगा फरा असल के मुखालिफ हो गई, हालांकि फरा असल के मुखालिफ नहीं हो सकती। और फिर मुखालिफत की सूरतें भी जिक्र कर दी थी कि दो सूरतें हो सकती हैं मुखालिफत की, अगर वो जर, वो जो फरा वाला जर है यानी इजाफत लफ्जिया वाला जर, अगर वो इसम के साथ खास नहीं तो फिर किसके साथ खास होगा? या तो फेल के साथ खास होगा, ये भी मुखालिफत है, और या दोनों में, इसम और फेल दोनों में पाया जाएगा, ये भी क्या है? फरा असल की मुखालिफत कर रही है, और इस सूरत में तो फरा असल से भी बढ़ जाएगी, हालांकि फरा असल से बढ़ नहीं सकती। बात समझ में आ गई, तो साबित हुआ कि जब असल इजाफत मानविया जो है उसका जर इसम के साथ खास है, तो फरा जो है इन इजाफत लफ्जिया उसका जर भी इसम ही के साथ खास होगा। और उसके बाद फिर हमने तनवीन के बारे में पढ़ा था कि यह तनवीन जो है यह भी इसम का खासा है, और यह तनवीन जो है पांच किस्म पर है। इनमें से तनवीन तरन्नुम के अलावा बाकी चारों किस्में जो तनवीन की हैं वो इसम ही में आती हैं और किसी में नहीं, जबकि तनवीन तरन्नुम ये सिर्फ अशआर में आती है, उसका वजन बरकरार रखने के लिए, उसमें तरन्नुम पैदा करने के लिए, ताकि आवाज लंबी हो जाए और फिर नून है गुन्ना किया जाएगा, नाक में आवाज ले जाते हैं, तो ये इसम में भी आ सकती है, फेल में भी और हर्फ में भी। जबकि बाकी किस्में जो हैं तनवीन की, यानी तनवीन तमक्कुन, तनवीन तनकीर, तनवीन इवज और तनवीन मुकाबला, ये चारों जो हैं इसम के साथ खास हैं। तनवीन तमक्कुन जो है वो ये बतलाती है कि इसम मुतमक्किन है, इसम में असल भी क्या है, मुतमक्किन होना। एक मुतमक्किन होता है वो इसम जो इराब को जगह दे, और एक इसम गैर मुतमक्किन होता है जिसको इसमें मबनी कहते हैं भाई, और वो एराब को जगह नहीं देता। तो ये तनवीन तमक्कुन बतलाती है कि ये इसम अपनी असल पर बाकी है, किस पर, अपनी असल पर बाकी है। तो ये जो आम असमा के अंदर तनवीन आती है ये सब तनवीन तमक्कुन है। और दूसरी तनवीन तनकीर है भाई, और तनवीन तनकीर सिर्फ इसमें फेल के अंदर आती है, सह और सहिन। सह का माना अभी खामोश हो जाओ, और सहिन का माना किसी वक्त तो खामोश हो जाओ, तो ये तनकीर के लिए है तनवीन। सह हो तो ये मारिफा है, सहिन हो तो ये नकेरा है। तो लिहाजा आम अस्मा के अंदर जो तनवीन आती है इसम में, वो तनवीन तमक्कुन होती है। लिहाजा आप गुलाम उन पर जो तनवीन आ रही है ये न समझें कि ये तनवीन तनकीर वाली है, ये तनवीन तनकीर वाली है। अगर ये तनवीन तनकीर वाली होती, ये बतलाती है कि गुलाम नकेरा है, तो फिर तो जैदुन पर ये तनवीन नहीं आनी चाहिए थी, जैदुन तो अलम है, वो तो मारिफा है। तो ये आम इसम में जो तनवीन आती है वो तनवीन तमक्कुन है, वो सिर्फ इतना बताती है कि ये इसम अपनी असल पर है, यानी इसमें मुतमक्किन है भाई। और तीसरी किस्म थी तनवीन इवज, और जो मुजाफुन इलै के इवज में आती है, जैसे हीन इजिन और यौम इजिन, या कुल्लुन, कुल्लुन पर भी जो तनवीन आती है वो मुजाफुन इलै के इवज आती है। और चौथी किस्म है तनवीन मुकाबला, वो तनवीन जो जमा मुअन्नस सालिम में आती है, मुस्लिमातिन और मुस्लिमातुन, ये तनवीन जो है ये मुकाबले में इसको दी गई, क्योंकि जमा मुजक्कर सालिम के आखिर में नून दिया गया था जो कायम मकाम तनवीन था, तो मुस्लिमात इनको तनवीन दे दी गई उसके मुकाबले में भाई। अब आगे सबक देखिए भाई, कहते हैं वमिन हल इसनादु इलैही हुआ बिर्रफ़अतुन अला दुखूलि ला अला मदखूलि। इसम के खासे जिक्र हो रहे हैं, तीन खासे जिक्र हो गए। पहला क्या था, दुखूलुल्लामी, वमिन खवासिही दुखूलुल्लामी वल जर्रि व तनवीनी। तो ये जर का आतफ भी अल्लाम पर था, और तनवीन का आतफ भी अल्लाम पर था, और अल्लाम तो मुजाफुन इलै था दुखूल के लिए और मजरूर था, तो ये सारे भी क्या थे, मजरूर थे, इन पर हमने जर पड़ा। लेकिन आगे जो आ रहा है वमिन हल इसनादु इलैही, देखा वमिन हल इसनादु इलैही, यहां वमिनहा दुखूल उल इसनाद नहीं कहा, दुखूल का लफ्ज खत्म कर दिया। साहिब जामी दर असल बतलाना यह चाहते हैं कि अल इसनादु इलैही, इसको मरफू पढ़ना, इसका अतफ दुखूल पर करना, इसका अतफ लाम पर न करना। वमिन खवासिही दुखूल उल्लामी, दुखूल तो क्या है, मरफू, और अल्लामी मजरूर है, तो इसका अतफ लाम पर न करना बल्कि किस पर करना, दुखूल पर करना। वजह यह कि दुखूल का माना है दाखिल होना, और दाखिल होना आम है, कि लफ्ज के शुरू में कोई चीज आकर जुड़ जाए या लफ्ज के आखिर में आकर जुड़ जाए उसको कहते हैं दाखिल होना। तवज्जो है कि ये इस लफ्ज पर यह चीज दाखिल हो गई है, चाहे शुरू की जानिब से चाहे आखिर की जानिब से, बल्कि ज्यादातर दुखूल शुरू में आए तो उसके लिए दुखूल कहते हैं, और जो आखिर में आकर जुड़े उसको लुहूक कहते हैं, लाहिक होना। क्या होना, लाहिक होना, यानी आखिर में आकर जुड़ना भाई। लेकिन यहां पर जो दुखूल का लफ्ज आया उसको आम रखा साहिब जामी ने भाई। देखो दुखूलुल्लामी, लाम कहां आकर जुड़ता है लफ्ज के साथ शुरू में, और दुखूलुल जर्री व तनवीन, ये जर और तनवीन कहां आकर जुड़ते हैं आखिर में। लेकिन सबको दुखूल के तहत रखा, यानी दुखूल वैसे तो कहते हैं शुरू में आना, लेकिन मजाजन इसका माना कर लें जुड़ जाना, आकर किसी लफ्ज के साथ किसी चीज का आकर जुड़ जाना। तो अब इसका आम माना कर लिया, अब ये जुड़ जाना आम है। शुरू में कोई चीज जुड़े तब भी हम कहेंगे ये इसके साथ जुड़ गई, आखिर की तरफ से आकर जुड़ जाए तो भी, तब भी हम क्या कहेंगे ये चीज इसके साथ जुड़ गई। तो गोया मजाजी माना कर लिया दुखूल का, यानी इत्तेसाल भाई। तो लाम तो शुरू में आया है वो तो इसम पर दाखिल है, और जर और तनवीन तो आखिर में आए हैं, उनके लिए लफ्ज तो है लाहिक, लेकिन मजाजन उनको भी क्या कहेंगे कि वो भी दाखिल हुए हैं इसम पर। बात समझ में आ गई। लेकिन ये जो इसनाद है, इसनाद और इसी तरह आगे इजाफत आ रही है, तवज्जो है, इसनाद ये तो एक मानवी चीज है, दो लफ्जों के दरमियान, दो लफ्जों के दरमियान जो जोड़ है, एक लफ्ज का दूसरे लफ्ज पर हुक्म लगा दिया जाए, उनमें रबत दे दिया जाए, तो इसको कहते हैं इसनाद, यानी एक चीज का दूसरी चीज पर हुक्म लगा दिया जाए। तो ये इसनाद उन दोनों के दरमियान जो रबत है, जो जोड़ है, उसको कहते हैं। और इसी तरह इजाफत भी दो चीजों के दरमियान जोड़ का नाम है, उनमें जो पहले आए उसको कहते हैं मुजाफ, और दूसरे को क्या कहते हैं मुजाफुन इले। गुलाम उजैदिन, इन दोनों के दरमियान क्या है, इजाफत है। तो इजाफत भी एक मानवी चीज है, दो चीजों के दरमियान जोड़ को कहते हैं, दो लफ्जों के दरमियान, और इसनाद भी दो लफ्जों के दरमियान जोड़ को कहते हैं। लेकिन फर्क यह है कि इसनाद के अंदर जो है वो बात पूरी होती है, यानी वो जुमला होता है, वो निस्बत ताम होती है। तवज्जो है, देखो जैदुन कायमुन, ये कायमुन की निस्बत मैंने जैद की तरफ की, और गुलामु जैदिन, ये गुलाम की निस्बत मैंने किसकी तरफ की, जैद की तरफ। तो दोनों में निस्बत है, लेकिन फर्क ये है कि जैदुन कायमुन, इसके अंदर जो कायमुन की निस्बत जैद की तरफ हो रही है, ये निस्बत तामा है, यानी पूरी है इसके अंदर बात। और गुलामु जैदिन के अंदर जो गुलाम की निस्बत जैद की तरफ हो रही है, वो निस्बत ताम नहीं है, बल्कि गैर ताम है। तो इसनाद वो भी एक मानवी चीज है, दो लफ्जों के दरमियान जोड़ का नाम है। दो लफ्जों में जोड़ आंखों से नजर आता है या उस पर आप तलफुज करते हैं, जैदुन कायमुन, इन दोनों के दरमियान क्या है, तवज्जो है, जैदुन कायमुन में क्या है, इसनाद है। इसनाद पे कोई तलफुज कर रहे हो नहीं, वो तो एक मानवी चीज है, दो लफ्जों के दरमियान जोड़ का नाम है। और इसी तरह गुलामु जैदिन, इन दोनों के दरमियान भी क्या है, इजाफत है, निस्बत है, और निस्बत भी किसका नाम है, एक मानवी चीज है। तो जब ये एक मानवी चीज है तो ये तो लफ्जों में तो शुरू में दाखिल हो या आखिर में आकर दाखिल हो, नहीं, ये लफ्ज की सिफत तो बनती है लेकिन उसके शुरू या आखिर में आकर नहीं जुड़ती। जैदुन कायमुन में क्या है, इसनाद है। तो मालूम हुआ इसनाद दोनों की सिफत है, लेकिन ये इसनाद कहां आकर जुड़ी, शुरू में या आखिर में, या बस लफ्ज की सिफत बन गई, लफ्ज की सिफत बन रही है, शुरू में या आखिर में आकर नहीं जुड़ती। तो और दुखूल का लफ्ज तो किसके लिए बोलते हैं, शुरू में आकर जुड़े या आखिर में आकर जुड़े। तो लिहाजा ये इसनाद और इजाफत ये ऐसे नहीं है, ये शुरू में या आखिर में आकर नहीं जुड़ते, ये मानवी चीज है, दो लफ्जों के दरमियान जोड़ और रबत का नाम है। ये उन लफ्जों की सिफत तो बनती है मानवी तौर पर, लेकिन लफ्जों के अंदर ये नजर नहीं आती, यानी इस पर तलफुज नहीं होता। तो इसनाद का आतफ अल्लाम पर नहीं करेंगे, वरना तो इबारत बन जाएगी दुखूलुल इसनादी इलैही, और इसनाद तो इसम पर दाखिल नहीं होती, यानी शुरू और आखिर में आकर उसके साथ नहीं जुड़ती है। तो एक मानवी चीज है भाई, ये क्या है, मानवी चीज है, लफ्जों में है ही नहीं कि जिस पर इंसान तलफुज करे। लाम अलिफ लाम पर भी इंसान क्या करता है, तलफुज। अर्रजुल, देखो मैं तलफुज कर रहा हूं। जर पे भी इंसान तलफुज करता है, मररतु बिज़ैदिन, देखो जर पे मैं क्या कर रहा हूं, तलफुज कर रहा हूं। और तनवीन पे भी इंसान तलफुज करता है, जैदुन, देखो मैं इस पर रफा पर तनवीन पर तलफुज कर रहा हूं। जबकि इसनाद तो एक मानवी चीज है, वो तो लफ्ज की कबील से नहीं, और इजाफत भी इसी तरह एक मानवी चीज है, लफ्ज की कबील से नहीं, लिहाजा उसके लिए दुखूल का लफ्ज नहीं बोलेंगे। दुखूल उल इसनादी या दुखूल उल इजाफती नहीं कहेंगे, तो ये दुखूल के तहत नहीं बल्कि इसका आतफ दुखूल पर कर दो। तवज्जो है, इबारत क्या थी, वमिन खवासी ही दुखूल उल्लामी, और इसम के खासों में से है लाम का दाखिल होना, इसी लाम पर आतफ किया जर का भी और इसी पर आतफ किया तनवीन का भी, तो वो भी दुखूल के तहत आ गए, दुखूल उल्लामी वल जर्री व तनवीनी। लेकिन वल इसनादु इलैही, इसका आतफ अल्लाम पर न करो बल्कि किस पर करो, दुखूल पर करो, और दुखूल मरफू था तो इसनाद को भी क्या पढ़ो, मरफू। वमिन खवासिहिल इसनादु इलैही, और इसम के खासों में से है उसका मुस्नद इलैह होना। वल इजाफतु, और इसम के खासों में से है इजाफत। देखिए भाई किताब पर कहते हैं वमिन हल इसनादु इलैही, और इसम के खासों में से जो है अल इसनादु इलैही, उसकी तरफ इसनाद का होना। हुआ बिर्रफ़ी, ये अल इसनादु इलैही किसके साथ है, रफा के साथ है, यानी इस पर रफा पढ़ना। आतफुन अला दुखूली, इसका आतफ किस पर है, दुखूल पर है, और वो मरफू था तो ये भी मरफू है। ला अला मदखूली ही, ये दुखूल के मदखूल पर इसका आतफ नहीं है। दुखूल का मदखूल कौन था पीछे, लाम भाई, उस पर दुखूल का लफ्ज दाखिल हो रहा था तो लाम क्या हुआ, मदखूल दुखूल हुआ, उसका मदखूल हुआ, तो उस लाम पर यह आतफ नहीं है। ला अला मदखूल ही, उसके मदखूल पर आतफ नहीं है, यानी ये मजरूर नहीं है भाई। क्यों, वजह क्या है, इसका आतफ दुखूल पर क्यों कर रहे हैं, उसके मदखूल पर क्यों नहीं कर रहे। कहते हैं ली अन्नल मुतबादिर मिनद दुखूली, मुतबादिर तबादुर का माना एक चीज का जहन की तरफ सबकत करना, जहन में फौरन आ जाना। कहते हैं इसलिए ली अन्नल मुतबादिर मिनद दुखूली, इसलिए कि दुखूल से जो मुतबादिर होता है, यानी लफ्ज दुखूल बोलें दाखिल होना बोलें, तो जहन में फौरन यह बात आती है कि कोई चीज लफ्ज के शुरू में आकर जुड़ी है या उसके आखिर में आकर जुड़ी है भाई। और इसनाद और इजाफत ऐसे नहीं है। लिअन्नल मुतबादिर मिनद दुखूली, इसलिए क्योंकि दुखूल से जो चीज मुतबादिर होती है यानी फौरन जहन में आती है, अज़्ज़िक्रु फिल अव्वली, वो शुरू के अंदर जिक्र करना, यानी लफ्ज के शुरू में किसी चीज को जिक्र करना यानी उसके साथ जोड़ना। अविल लुहूक बिल आखिरी, या आखिर में उसके साथ लाहिक होना, जुड़ जाना। दुखूल से यह बात जहन में आती है कि कोई चीज लफ्ज के शुरू में आकर जुड़ गई है या आखिर में आकर जुड़ गई है। वकीला हुमा मुंतफिया निफिल इसनाद, और ये दोनों चीजें इसनाद में मुंतफी हैं। इसनाद किसी इसम के शुरू या आखिर में आकर नहीं जुड़ता, यह तो एक मानवी चीज है, यह लफ्ज की कबील से नहीं है। व कजा फिल इजाफती, और इसी तरह इजाफत में भी है, इजाफत भी एक मानवी चीज है, लफ्ज के कबील से नहीं, तो वह लफ्ज के शुरू या आखिर में नहीं जुड़ेगी। वल मुराद बिही कौन शय मुस्नदन इलैही, और इससे मुराद एक शय का मुस्नद इलैह होना है। इस बात को अच्छी तरह समझ लें। वल मुराद बिही, कहते हैं ऊपर जो मतन में आया ना वल इसनाद इलैही, इससे क्या मुराद है, कहते हैं वल मुराद बिही, इससे मुराद जो है कौन शय मुस्नदन इलैही, एक शय का मुस्नद इलैह होना है भाई। देखिए वल इसनाद इलैही, इलैही की हाज अमीर किसको राजे, इसम को, इसम के खासों में से क्या है अल इसनाद इलैही, उसकी तरफ इसनाद का होना, इसम की तरफ इसनाद का करना, ये क्या है इसम का खासा। कहते हैं भाई ये तो हर एक को पता है, इसम की तरफ इसनाद करोगे तो वो इसम ही का खासा होगा, किसी और चीज का खासा नहीं, तो ये तो आपका कलाम बेकार हुआ, इसका तो कोई फायदा नहीं हुआ, ये तो सब जानते हैं। इसम की तरफ जब इसनाद करोगे तो वो इसम का ही खासा होगा। तवज्जो है, बात समझ भी आ रही है कि नहीं, नहीं समझ में आई। इधर देखो, मेरे पास ये तीन लफ्ज हैं, इसम फेल और हर्फ, इसम फेल और हर्फ। मैं एक चीज का इसनाद इसम की तरफ करता हूं, बताइए ये इसनाद किसके साथ खास, बोलते क्यों नहीं, खामोश क्यों, ये इसनाद किसके साथ खास। मेरे पास तीन कलिमे हैं, इसम भी है, फेल भी है, हर्फ भी है। मैं एक चीज का इसनाद करता हूं किसकी तरफ, इसम की तरफ। जब मैंने ये इसनाद इसम की तरफ किया है तो ये इसनाद किसके साथ खास है, जाहिर सी बात है जो इसनाद इसम की तरफ आपने किया है वो इसनाद इसम के साथ ही खास होगा, फेल और हर्फ में तो नहीं पाया जाएगा क्योंकि उसकी तरफ आपने इसनाद ही नहीं किया, उसकी तरफ اس کی طرف جب اسناد ہی نہیں کیا ان دونوں کی طرف، آپ نے اسناد ہی کس کی طرف کیا ہے؟ اسم کی طرف، تو وہ تو اسم کے ساتھ ہی خاص ہوگا، تو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ اسم کی طرف جو اسناد کیا جائے وہ اسم کے ساتھ خاص ہوتا ہے، یہ تو سب جانتے ہیں. اگر میں اسناد فعل کی طرف کروں گا وہ کس کے ساتھ خاص ہوگا؟ فعل کے ساتھ خاص ہوگا. میں اسناد اگر حرف کی طرف کروں گا تو وہ اسناد کس کے ساتھ خاص ہوگا؟ حرف کے ساتھ خاص ہوگا. تو جس چیز کی طرف اسناد کیا جائے وہ اسی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اوروں میں تو وہ اسناد نہیں ہوتا. تو ول اسناد الیہ، الیہ کے ہاں ضمیر کس کو راجع؟ اسم کو. اسم کی طرف جو اسناد کیا جائے، بھئی یہ تو ظاہر سی بات ہے وہ اسم کے ساتھ ہی خاص ہوگا، تو اس کو خاصوں میں شمار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو سب کو پتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسم کی طرف جو اسناد کرو گے وہ اسم کے ساتھ ہی خاص ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے میں کہوں ایک ہے زید کی سخاوت، ایک ہے عمر کی، ایک بکر کی. میں کہتا ہوں زید کی سخاوت زید کے ساتھ خاص ہے. زید کی سخاوت، بھئی جب سخاوت زید کی ہے تو وہ خاص بھی زید کے ساتھ ہی ہوگی نا. وہ تو عمر کی تو الگ سخاوت ہے، بکر کی الگ. تو یہاں پر بھی اسی طرح جب آپ نے اسناد ہی اسم کی طرف کیا ہے تو وہ اسناد تو اسم کے ساتھ ہی خاص ہوگا، آپ نے تو فعل اور حرف کی طرف کیا ہی نہیں ہے، تو ان میں تو وہ پایا ہی نہیں جائے گا. تو یہ ہمیں بتانے کا کیا فائدہ بھائی؟ اشکال سمجھ میں آیا؟ تو آپ کو بتلائیں گے کہ بھائی ول اسناد الیہ سے مراد یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ ول مراد بھی کون شیء مسند الیہ، اس سے مراد یہ ہے ایک شے کا مسند الیہ ہونا. ایک شے کا، کوئی بھی شے جب مسند الیہ بنے سمجھ جاؤ یہ اسم ہے. کوئی بھی شے جب کیا بنے؟ مسند الیہ بنے، سمجھ جاؤ یہ کیا ہے. تو اس ول اسناد الیہ کا یہ معنی نہیں کہ اسم کا مسند الیہ ہو. آپ کیا سمجھے؟ آپ دراصل یہ سمجھ رہے تھے ول اسناد الیہ کا معنی ہے کون الاسم، کون الاسم مسند الیہ، اسم کا مسند الیہ ہونا. اسم کا، بھئی میرے پاس تین کلمے ہیں اسم، فعل اور حرف، میں نے کس کو مسند الیہ بنایا؟ اسم کو. جب میں نے اسم کو مسند الیہ بنایا ہے تو یہ اسناد بھی کس کے ساتھ خاص ہوگا؟ اسم کے ساتھ. تو آپ تو یہ سمجھ رہے تھے کون الاسم مسند الیہ، اسم کا مسند الیہ ہونا یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ توجہ ہے پھر میرے لفظوں پہ ذرا غور کرو. اسم کا، اسم کا مسند الیہ ہونا کس کا؟ اسم کا مسند الیہ ہونا یہ تو اسم میں ہی ہوگا نا، فعل میں تو نہیں ہو سکتا. تو آپ اس کا معنی سمجھے ہیں اسم کا مسند الیہ ہونا، اور اسم کا مسند الیہ ہونا تو اسم کے ساتھ خاص ہے، وہ تو فعل نہیں ہو سکتا، وہ تو حرف نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں نہیں، اس کا یہ معنی نہیں اسم کا مسند الیہ ہونا، معنی ہے ایک شے کا مسند الیہ ہونا، کسی بھی شے کا مسند الیہ ہونا یہ علامت ہے اسم کی کہ وہ شے اسم ہے. کوئی بھی شے دنیا میں لے آؤ اور وہ کیا بن جائے، وہ مسند الیہ بن رہی ہو تو وہ کیا ہوگی؟ اسم ہوگی. تو اسم کا مسند الیہ ہونا یہ ترجمہ نہ کرو. بات سمجھ بھی آئی کہ اوپر سے گزر گئی؟ ول اسناد الیہ، اس کا ترجمہ یہ نہ کرنا کہ اسم کا مسند الیہ ہونا. اسم کا مسند الیہ ہونا وہ تو اسم ہی میں ہوگا، فعل میں تو نہیں ہو سکتا وہ، بلکہ اس کا معنی کیا ہے کون شیء مسند الیہ، ایک شے کا مسند الیہ ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے. جو بھی شے مسند الیہ آپ کو مل جائے، جہاں بھی مل جائے، یہ علامت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شے اسم ہے، یہ اسم ہے، فعل یا حرف نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ول مراد بھی کون شیء مسند الیہ، اور ول اسناد الیہ سے مراد جو ہے کون شیء مسند الیہ، ایک شے کا مسند الیہ ہونا ہے. وَإِنَّمَا اخْتُصَّ هَذَا الْمَعْنَى بِالِاسْمِ. سوال، یہ مسند الیہ ہونا اسم کے ساتھ کیوں خاص ہے؟ مسند الیہ ہونا اسم کے ساتھ کیوں خاص ہے، فعل کیوں نہیں مسند الیہ بنتا؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ فعل کو وضع کیا گیا ہے مسند ہونے کے لیے. توجہ ہے، فعل کا ہمیشہ اسناد فاعل یا نائب فاعل کی طرف ہوگا، تو فعل کو وضع ہی کس لیے کیا گیا ہے؟ مسند ہونے کے لیے. تو اگر فعل کو مسند الیہ بھی بنا دیں گے یہ تو اس کی وضع کے خلاف ہو جائے گا. توجہ ہے، فعل کو وضع ہی کس لیے کیا گیا ہے؟ مسند ہونے کے لیے. اگر آپ اس کو کیا بنا دیں گے؟ مسند الیہ بنا دیں گے، یہ تو اس کی وضع کے خلاف ہو جائے گا. اس کو تو وضع ہی کس لیے کیا گیا ہے؟ مسند ہونا. تو فعل صرف مسند بنے گا، کبھی بھی مسند الیہ نہیں بنے گا، ورنہ اس کی وضع کے خلاف لازم آئے گا. कहते हैं वही नमखतुस सहाजल माना बिलिस्मी, और ये वाला माना यानी मुस्नद इलैह होना एक शय का ये इसम के साथ खास है। लियान अल्फिअल कद वुज़िअ लियकूना अबदन मुस्नदन फकत, इसलिए क्योंकि फेल जो है तहकीक उसको वजा किया गया है कि वो हमेशा मुस्नद हो सिराफ। फलाउ जुइला मुस्नदन इलैही, अगर उसको मुस्नद इलैह भी बना दिया जाए तो यलजमु खिलाफ वज़ईही, तो उस फेल की वजा के खिलाफ लाजिम आएगा। हर्फ को जिक्र ही नहीं किया इन्होंने, क्या कहा मुस्नद इलैह होना किसका खासा है, इसम का है, फेल नहीं हो सकता। हर्फ की भी तो बात करें, हर्फ भी तो हमें बताएं कि वो भी मुस्नद इलैह नहीं हो सकता। भाई उसकी बात पहले हो चुकी कि मुस्नद इलैह वही बनता है जो मुस्तकिल भी जात हो, जो वो जो मुस्तकिलन समझ में आ रहा हो, जिसकी जिसकी तरफ अकल की भी जात तवज्जो हो, और हर्फ का माना तो मुस्तकिल नहीं होता और वो भी जात उसकी तरफ जहन की तवज्जो नहीं होती, लिहाजा वो मुस्नद इलैह नहीं बन सकता। ये बात जाहिर है भाई, क्योंकि मुस्नद महकूमुन अलैह और महकूमुन बिही होने के लिए का माना मुस्तकिल होना चाहिए, और वो सिर्फ इसम का माना मुस्तकिल है और फेल का माना मुस्तकिल है, तो इन दोनों में तो जहन में आ सकता है कि फेल क्यों नहीं मुस्नद इलैह बन रहा, और हर्फ का तो माना ही मुस्तकिल नहीं है तो उसका तो एहतमाल ही नहीं है, वो ना तो महकूमुन अलैह बन सकता है ना महकूमुन बिही। मालूम हुआ मुस्नद इलैह होना किसका खासा है, इसम का। भाई हम आपको दिखाते हैं फेल मुस्नद इलैह बन रहा है, ज़राबा फ़िअलुन, ज़राबा फेल है, बात पूरी है कि ना मुकम्मल है, ज़राबा फ़िअलुन ज़राबा फेल है, देखो इसमें बात पूरी है, तो देखो फेल भी मुस्नद इलैह बन रहा है, ज़राबा फ़िअलुन इसमें ज़राबा मुस्नद इलैह है, मुब्तदा है, ज़राबा फ़िअलुन मैंने किसके बारे में बात की, ज़राबा के बारे में, तो ज़राबा क्या बन गया मुस्नद इलैह, और क्या बात की कि वो फेल है तो वो खबर बन गई। इसी तरह मैं कहता हूं मीन हारफुन, किसके बारे में बात की, मीन के बारे में, तो मीन क्या बनेगा, मीन मीन हारफुन, मीन हार्फ है, तो मीन हारफुन मैंने किसके बारे में बात की, हर्फ के बारे में, मीन के बारे में, तो वो क्या है मुस्नद इलैह, और क्या बात की कि वो हर्फ है तो हर्फ ये क्या बन गया मुस्नद यानी खबर बन गया। तो आपने तो कहा था मुस्नद इलैह सिर्फ इसम बनता है, हमने आपको दिखा दिया ज़राबा फ़िअलुन इसमें यह ज़राबा मुस्नद इलैह बन रहा है, और मीन हारफुन इसमें मीन मुस्नद इलैह बन रहा है, क्या जवाब देंगे भाई, शाबाश। यहां याद रखो ये ज़राबा फ़िअलुन इसमें यह ज़राबा अलम है भाई, अलम के दर्जे में है, समझ में आया, और इसकी अलामत मैंने आपको बतलाई थी कि जब लफ्ज बोलकर लफ्ज मुराद हो माना मुराद ना हो तो फिर वो अलम होता है। देखो ज़राबा फ़िअलुन क्या तर्जमा किया, ज़राबा फेल है, भाई ज़राबा का तर्जमा क्यों नहीं कर रहे, ज़राबा का माना तो है उस एक आदमी ने गुज़श्ता जमाने में पिटाई की, ये तर्जमा आप नहीं कर रहे, ज़राबा का तर्जमा नहीं कर रहे, मालूम हुआ ज़राबा यहां अलम है, यानी वो जो इबारतों में गर्दानों में आप ज़राबा ज़राबा पढ़ते हैं उसका नाम ही हमने क्या रख दिया ज़राबा, तो ये आलम के दर्जे में है इस वक्त, और आलम क्या होता है इसम है, इसम की किस्म है, तो लिहाजा ये इस वक्त आलम है, इस वक्त ये फेल है ही नहीं, ये आलम है इसम है, या ये हाज़ल लफ्ज़ की तावील में है, हाज़ल लफ्ज़ फ़िअलुन ये वाला लफ्ज़ क्या है फेल है। इसी तरह मीन हर्फुन, मीन का माना तो है शुरू करना, तो मीन हर्फुन इसका तर्जमा करो, मीन हर्फ है, देखा आप मीन का तर्जमा नहीं कर रहे, मालूम हुआ ये मीन भी यहां आलम है, आलम के दर्जे में है, वो जो इबारतों में मीन आता है उसका हमने नाम ही क्या रख दिया मीन रख दिया, या ये हाजल लफ्ज की तावील में है, हाजल लफ्ज हर्फुन ये वाला जो हर्फ है यानी मीन ये हर्फ है। तो मुस्नद इलैह होना इसम का खासा है, ज़राबा फ़िअलुन इसमें ये ज़राबा इस वक्त इसम है अलम है, इसी तरह मीन हर्फुन इसके अंदर जो मीन है ये इस वक्त इसम है अलम है भाई। आगे देखिए व मीन हल इजाफतु, और इसम के खवास में से इजाफत है भाई, इसको भी मरफू पढ़ना, व मीन हल इजाफतु इसम के खासों में से इजाफत है भाई। इजाफत मैंने आपको बतलाया इजाफत दो लफ्जों के दरमियान निस्बत का नाम है। गुलाम उज़ैदीन मैंने गुलाम की निस्बत कर दी किसकी तरफ, زید کی طرف کہ یہ زید کا غلام ہے، بکر یا عمر کا غلام نہیں ہے۔ تو اضافت دو لفظوں میں نسبت کا نام ہے، نسبت کا نام ہے، اور یہ اضافت کس کا خاصہ ہے؟ اسم کا۔ تو یہ تو دو لفظوں میں جوڑ ہے، پہلے کو کہتے ہیں مضاف اور بعد والے کو کہتے ہیں مضافون الے۔ تو اس اضافت سے کون کیا مراد ہے، مضاف ہونا اسم کا خاصہ ہے یا مضاف الے ہونا اسم کا خاصہ ہے؟ تو آپ کو بتلائیں گے کہ مضاف ہونا اسم کا خاصہ ہے۔ اضافت سے کیا مراد ہے، ایک شے کا مضاف ہونا، یہ علامت ہے اس کے اسم ہونے کی۔ جو بھی شے جہاں بھی آپ کو نظر آ جائے کہ وہ مضاف بن رہی ہے، سمجھ جاؤ وہ اسم ہے۔ بھائی مضاف الیہ کی بات کیوں نہیں کرتے، آگے چل کر آپ کو بتائیں گے، کیونکہ مضاف الیہ کبھی جملہ بھی بن جاتا ہے یا فعل بھی بن جاتا ہے۔ فعل بھی کیا بن جاتا ہے، مضاف الیہ بن جاتا ہے۔ معلوم ہو مضاف الیہ صرف اسم نہیں بنتا بلکہ اسم کے ساتھ ساتھ فعل بھی بنتا ہے، اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں ومن حل اضافہ، تو اسم کے خاصوں میں سے اضافت ہے، ای کون الشیء مضافن، یعنی ایک چیز کا مضاف ہونا، بی تقدیر حرف الجر لا بی ذکر ہی لفظن، تقدیر حرف جر کے ساتھ نہ کہ حرف جر کے ذکر کے ساتھ لفظوں میں۔ یعنی اضافت میں حرف جر ہمیشہ تقدیرن ہونا چاہیے، لفظوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی یہ قید کیوں لگا رہے ہیں کہ تقدیرن ہونا چاہیے لفظوں میں نہیں ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ مررت بزید، مررت بھی حرف جر کو کس لیے وضع کیا گیا ہے، یہ فعل کے معنی کو پہنچاتا ہے کس کی طرف، اسم کی طرف۔ تو اس با نے کیا فائدہ دیا، مررت بزید، اس با نے مررت کا معنی پہنچا دیا کہاں تک، زید تک۔ توجہ ہے، مررتو زید میں براہ راست عمل نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مررتو فعل لازم ہے، اس فائل پر بات پوری ہو جاتی ہے، اور مررتو کے ساتھ تاضمیر فائل کی جڑی ہوئی ہے، آگے زید کو میں معمول بنانا چاہتا تھا تو پھر مررتو اس میں براہ راست عمل نہیں کر سکتا، اس کو نصب نہیں دے سکتا، تو میں نے حرف جر کی مدد لے لی، مررتو بزیدن۔ تو یوں کہیں گے کہ مررتو کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف، زید کی طرف، کیونکہ اضافت کا معنی ہے نسبت۔ تو اگر حرف جر لفظوں میں ہو، توجہ ہے، اگر حرف جر لفظوں میں ہو پھر تو فعل بھی مضاف بن گیا، اس کو بھی مضاف کہنا پڑے گا، کیونکہ یہ مررتو کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف، زید کی طرف، لیکن یہ با لفظوں میں موجود ہے، توجہ ہے، توجہ، لفظوں میں موجود ہے۔ تو لہذا اضافت سے وہ والی اضافت مراد ہے جس میں حرف جر تقدیرن ہوتا ہے، جیسے غلام زیدین، اس کے اندر حرف جر تقدیرن ہے لفظن نہیں۔ اگر لفظن کی بات کرو گے تو فعل بھی اس کے اندر آ جائے گا، حالانکہ فعل یہاں مراد نہیں ہے۔ تو لہذا ہم نے قید لگا دی کہ کون سی اضافت مراد ہے، جس میں حرف جر تقدیرن ہو، اور اس میں مضاف جو ہے وہ اسم کا خاصہ ہے، وہ صرف اسم بنے گا۔ کہتے ہیں ای کون الشیء مضافن بتقدیر حرف الجر، یعنی ایک شے کا مضاف ہونا حرف جر کی تقدیر کے ساتھ، یعنی حرف جر کو فرض کرتے ہوئے، لا بذکر ہی لفظن، نہ کہ اس کو لفظوں کے اعتبار سے ذکر کرتے ہوئے، ووجہ اختصاصہا بالاسم، بھئی کیا وجہ ہے، یہ اضافت اسم کا خاصہ کیوں، مضاف ہونا اسم کے خاصہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اضافت سے تین چیزوں میں سے ایک چیز لازم آئے گی۔ اضافت لفظیہ میں کیا، تخفیف آ جاتی ہے لفظ میں، کیا آ جاتی ہے، تخفیف آتی ہے، اور اضافت معنویہ میں تخفیف بھی آئے گی اور ساتھ ساتھ تعریف اور تخصیص بھی آئے گی، تعریف اور تخصیص بھی۔ تو معلوم ہوا تین چیزیں اضافت کے ساتھ لازم ہیں، یا صرف کیا ہوگی، تخفیف آئے گی لفظوں میں، یعنی تنوین اور قائم مقام تنوین گر جائے گا، یا اگر اضافت معنویہ ہے تو تخفیف بھی آئے گی، اور ساتھ اگر معرفہ کی طرف اضافت ہو رہی ہے تو تعریف بھی آ جائے گی، وہ مضاف بھی معرفہ بن جائے گا، اور اگر نکرہ کی طرف اضافت ہے تو لفظوں میں تخفیف بھی آئے گی اور نیز تخصیص بھی آ جائے گی، یعنی افراد کم ہو جائیں گے۔ توجہ ہے، تو اضافت کے ساتھ تین چیزیں لازم ہیں، تعریف، تخصیص اور تخفیف، تعریف، تخصیص اور تخفیف، یہ تینوں چیزیں لازم ہیں کس کے ساتھ، اضافت کے ساتھ، اور یہ تینوں چیزیں صرف اسم میں ہوتی ہیں، کس میں ہوتی ہیں، اسم میں۔ توجہ ہے، इधर देखिए, इधर देखिए, यह है इजाफत, और इजाफत के साथ तीन चीजें लाजिम हैं। तो इजाफत हुआ मलजूम और ये चीजें हुई लाजिम। और जब ये तीन चीजें सिर्फ इसम में होती हैं, यानी ये लाजिम सिर्फ इसम में होता है, तो मलजूम भी सिर्फ किस में होगा? इसम में। तवज्जो है, फिर सुनो। जैसे देखो, सूरज के निकलने के साथ दिन का होना लाजिम है। तवज्जो है, सूरज के निकलने के साथ दिन का होना लाजिम। तो दिन का होना हुआ लाजिम और सूरज का निकलना हुआ मलजूम। तो जब लाजिम पाया जाए, मालूम हुआ मलजूम भी है। बात समझ में आ रही? यहां पर भी इसी तरह है। एक है इजाफत, और इजाफत के साथ कितनी चीजें लाजिम है? तीन चीजें। कौन सी? तारीफ, तख्सीस और तख्फीफ। तो ये चीजें इजाफत के साथ लाजिम हैं। तो इजाफत क्या हुआ? मलजूम। तवज्जो है, मलजूम हुआ। और ये तीन चीजें सिर्फ इसम में होती हैं। तारीफ, मारिफा भी सिर्फ इसम होता है। तख्सीस भी सिर्फ किस में आती है? इसम में। और तख्फीफ भी सिर्फ किस में आती है? इसम में। न फेल में और न हर्फ में। फेल और हर्फ में न तारीफ होती है, न तख्सीस होती है, और न तख्फीफ होती है। तो ये तीन चीजें जो इजाफत के साथ लाजिम थी, ये सिर्फ इसम में है, तो इनका मलजूम भी सिर्फ किस में होगा? इसम में होगा। नहीं, बात समझ में आई? ये तीन चीजें क्या हैं? इजाफत के साथ लाजिम। ये चीजें इजाफत के साथ लाजिम। इजाफत क्या है? मलजूम है, मलजूम है। और ये जो तीन चीजें हैं, ये सिर्फ इसम में पाई जाती हैं और किसी में नहीं। तो जब ये लाजिम इसम में है, तो मालूम है इजाफत भी सिर्फ किस में है? कहीं और अगर इजाफत होती, इधर देखो, अगर इजाफत फेल में होती तो तारीफ, तख्सीस या तख्फीफ, इनमें से कुछ आना चाहिए था फेल में या नहीं? क्योंकि ये तो इजाफत के साथ लाजिम है। फेल में इनमें से तीनों में से कुछ भी नहीं आता। अगर इजाफत हर्फ में पाई जाती तो उसके अंदर भी तारीफ, तख्सीस या तख्फीफ, इनमें से कुछ ना कुछ आना चाहिए था, लेकिन हर्फ में भी इनमें से कुछ नहीं आता। और ये तीन चीजें सिर्फ इसम में आती हैं, मालूम हुआ इजाफत भी सिर्फ किस में है? इसम में होती है। यानी मुजाफ भी सिर्फ इसम होता है। अगर हर्फ या फेल मुजाफ होता तो फिर वहां पर भी इन तीन चीजों में से कुछ ना कुछ जरूर आना चाहिए था। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वह वजह इख्तिसासिहा बिलिस्मी, और इजाफत के इसम के साथ खास होने की वजह यह है, इख्तिसासु लवाजिमिहा, कि इसके लवाजिम जो है उनका इख्तिसास है। कौन से लवाजिम? मिन तारीफ व तख्सीस व तख्फीफ, यानी के तारीफ, तख्सीस और तख्फीफ, इनका इख्तिसास है। बिही अय बिलिस्मी, किसके साथ? इसम के साथ। इबारत समझ में आ गई? अब जरा तर्जमा दोबारा देख लें। कहते हैं वजह इख्तिसास हाबिल इस्मी, और इजाफत के इसम के साथ इख्तिसास की वजह यह है, इख्तिसासु लवाजिमिहा मिन तारीफ व तख्सीस व तख्फीफ बिही, के इजाफत के जो लवाजिम है यानी तारीफ, तख्सीस और तख्फीफ, वो इसम के साथ खास हैं। वही नमा फसरनल इजाफत अभी कौन शय मुजाफन। भाई इधर देखिए, इजाफत तो दो चीजों के दरमियान निस्बत का नाम है, तो आपने इजाफत का क्या माना किया? मुजाफ होना। तो मुजाफिले होना क्यों नहीं मुराद लिया, या दोनों क्यों नहीं मुराद लिए? तो आपको बतला रहे हैं कि भाई मुजाफिले होना, फेल और जुमला भी कभी मुजाफिले बन जाता है, वो इसम के साथ खास नहीं, इसलिए हमने मुजाफ होने को जिक्र किया। कहते हैं वह इन्नमा फसरनल इजाफत अभी कौन शय मुजाफन, और हमने इजाफत की तफसीर की एक शय का मुजाफ होना, लिअन्नल फिअल अविल जुमला कद यकउ मुजाफन इलैही, इसलिए क्योंकि फेल या जुमला जो है वो भी कभी मुजाफिले वाके हो जाते हैं। कमा फी, जैसे कि इस मिसाल में है भाई, अल्लाह ताला का कौल है यौमु यन्फउ सादिकीन सिदकुहुम। तो देखो यौमु ये मुजाफ है, किसकी तरफ? यन्फउ सादिकीन सिदकुहुम, इस जुमले की तरफ, इस जुमले की तरफ ये मुजाफ है। तो यन्फउ सादिकीन सिदकुहुम, ये पूरा जुमला मुजाफुन इले है। तो मालूम हुआ मुजाफिले होना सिर्फ इसम में नहीं होता, बल्कि जुमला भी मुजाफिले होता है। इसीलिए इजाफत से क्या मुराद लिया? एक शय का मुजाफ होना मुराद लिया, ये इसम का खासा है, मुजाफिले होना नहीं। नीज एक और बात देखिए, पीछे आया था लिअन्नल फिअल अविल जुमला तकद यकउ मुजाफन इलैही, इसलिए क्योंकि कभी फेल या जुमला जो है मुजाफिले वाके होते हैं। दरअसल यहां उलमा के दो गुरोह हैं। बाज उलमा फरमाते हैं کہ یہ یومو کی اضافت ینفع الصادقین صدقہم پورے جملے کی طرف ہے. اس کی اضافت تو پورا جملہ مضاف الیہ ہے. اس میں الصادقین یہ مفعول بھی ہے اور صدقہم یہ فاعل بنے گا اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ مضاف الیہ بنے گا. کس کے لیے؟ یومو کے لیے. تو پورا جملہ مضاف. اور جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ یوما کی اضافت جملے کی طرف نہیں ہے بلکہ ینفع فعل کی طرف ہے. کس کی طرف ہے؟ فعل کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے بھائی. یعنی اب الصادقین اور صدقہم کو ینفع کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں, اس کے بغیر ہی اس کی طرف اضافت ہو رہی ہے. وہ جڑیں گے تو یہ تو جملہ بن جائے گا. تو ایک قول یہ ہے, یہ معلوم ہوا پورے جملے کی طرف اضافت ہو رہی ہے, اور دوسرا قول یہ کہ صرف ینفع کا جو فعل ہے اس کی طرف اضافت ہو رہی ہے. تو صاحب جامی نے دونوں کی طرف اشارہ کر دیا. کس طرح؟ پیچھے کیا کہا تھا؟ لِأَنَّ الْفِعْلَ أَبِي الْجُمْلَ تَقَدْ يَقَعُ مُضَافًا إِلَيْهِ, کہ اس لیے کیونکہ فعل یا جملہ بھی کبھی مضاف الیہ واقع ہوتا ہے, کما فی, جیسے کہ اس مثال میں ہے. دیکھا دونوں کو ذکر کر دیا, فعل یا جملہ بھی مضاف الیہ واقع ہوتا ہے. وَقَدْ يُقَالُ, اور کبھی کہا جاتا ہے کہ هَذَا بِتَاوِيلِ الْمَصْدَرِ, کہ یہ مصدر کی تاویل میں ہے. یہ جو ینفع الصادقین صدقہم, یہ پورا جملہ کس کی تاویل میں ہے؟ مصدر کی تاویل میں ہے. دیکھیے آگے عبارت, ای یوم نفع الصادقین, تو اب یوم کی اضافت نفع مصدر کی طرف ہو گئی بھائی. اور مصدر تو اسم ہے, توجہ ہے, مصدر تو اسم. تو اگر یہ قول لے لیا جائے تو پھر تو مضاف ہونا بھی اسم کا خاصہ ہے اور مضاف الیہ ہونا بھی. یعنی اگر کسی جگہ آپ کو نظر آ جائے کہ اسم مضاف ہو رہا ہے جملے یا فعل کی طرف, تو وہ بھی کس تاویل میں ہوگا؟ وہ مصدر کی تاویل میں ہو جائے گا. اور مصدر تو کیا ہے؟ اسم ہے. معلوم ہوا وہ بھی اسم کی تاویل میں ہے. تو مضاف الیہ ہونا بھی کس کا خاصہ بن گیا؟ اسم کا خاصہ بن گیا. مصدر کیا ہوتا ہے؟ بات سمجھ میں آئی. انہوں نے کیا کہا تھا کہ اضافت سے کیا مراد ہے؟ ایک شے کا مضاف ہونا, مضاف الیہ نہیں, کیونکہ وہ تو فعل بھی ہوتا ہے یا جملہ بھی. اور بتلا دیے کہ بعض اس میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ فعل یا جملے کی طرح مضاف نہیں ہے بلکہ یہ جملہ مصدر کی تاویل میں ہے اور وہ مضاف الیہ بن رہا ہے. تو اس صورت میں تو پھر مضاف الیہ ہونا بھی کس کا خاصہ ہو گیا؟ اسم کا ہی خاصہ ہوا. مضاف بھی اسم کا خاصہ تھا اور مضاف الیہ جملہ یا فعل ہے, اس کو بھی کس تاویل میں کر لیا؟ مصدر یعنی اسم کی تاویل میں کر لیا. تو مضاف الیہ بھی اسم ہی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے ہمیشہ جو بھی جملہ آپ کو نظر ہے مضاف الیہ بن رہا ہے وہ کس تاویل میں کر لو؟ مصدر. اور مصدر تو اسم ہوتا ہے. معلوم مضاف الیہ ہونا بھی اسم کا خاصہ ہے. کہتے ہیں وقد یقال ھذا بتاویل المصدر, اور کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ مصدر کی تاویل میں ہے, ایوم نفع الصادقین. دیکھو ینفع کے بجائے مصدر لے آئے نفع الصادقین. فالاضافت بتقدیر حرف الجر, اب بتانے لگے ہیں. کہتے ہیں اگر یہ والا قول لے لیں تو پھر تو وہ اضافت جو حرف جر کی تقدیر کے ساتھ ہوتی ہے. ادھر دیکھیے پھر بات سمجھ لو, مشکل ہو جائے گی. ادھر دیکھیے انہوں نے کیا کہا تھا, اضافت سے کیا مراد ہے؟ ایک شے کا مضاف ہونا کس کے ساتھ؟ حرف جر کی تقدیر کے ساتھ, کہ حرف جر وہاں مقدر ہو. ایک شے کا مضاف ہونا حرف جر کی تقدیر کے ساتھ, یہ اسم کا خاصہ ہے. کہتے ہیں اگر یہ والا قول لے لو تو پھر مضاف اور مضاف الیہ دونوں اس میں داخل ہو گئے. چاہے مضاف ہو چاہے مضاف الیہ ہو, حرف جر کی تقدیر کے ساتھ. یا یوں کہو کہ جو بھی اضافت ہوگی حرف جر کی تقدیر کے ساتھ وہ مطلقاً اسم کا خاصہ ہے. جو بھی اضافت ہو حرف جر کی تقدیر کے ساتھ وہ اسم کا, جو بھی اضافت ہو, یعنی چاہے وہ مضاف ہو چاہے مضاف الیہ ہو. اضافت کا معنی انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایک شے کا مضاف ہونا. لیکن اب بتلا دیا کہ یہ والا قول لے لو تو مضاف بھی اسم کا خاصہ, مضاف الیہ بھی. تو یوں کہو کہ وہ اضافت جو حرف جر کے ساتھ ہو وہ مطلقاً اسم کا خاصہ ہے, یعنی چاہے جو مضاف ہے وہ ہو چاہے مضاف الیہ ہو, دونوں یہ اسم کے خاصے ہیں. ये माना है। फल इजाफा तो भी तकदीरी हर्फ इल जर मुतलकन यख्तसु बिल इस्मी, बस वो इजाफत जो तकदीर हर्फ जर के साथ हो, मुतलकन चाहे मुजाफ हो चाहे मुजाफिल, दोनों सूरतों में यख्तसु बिल इस्मी, ये खास है इसम के साथ। सवाल आगे, व इन्नमा कय्यदना हु, एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। सवाल ये कि आपने कहा था इजाफत का माना है एक शय का मुजाफ होना तकदीर हर्फ जर के साथ, लफ्जों में हर्फ जर ना हो बल्कि तकदीरन हो, यह क्यों कैद लगाई थी? वो मैंने वजह आपको बतला दी थी कि तकदीर हर्फ जर इसलिए किया ताकि फेल निकल जाए। मरारतु भी जैदीन, इसमें मरारतु की इजाफत हो रही है किसकी तरफ? जैद की तरफ, लेकिन इसमें बा लफ्जों के अंदर मौजूद है तो इजाफत तकदीर हर्फ जर के साथ हो वो इसम का खासा है, जो जिक्र हर्फ जर के साथ हो लफ्जों में वो इसम का खासा नहीं, वो फेल में भी होती है। तो कहते हैं वह इन्नमा कय्यदनाहु बिकौलिना बितकदीर हर्फिल जर्री, और हमने इसको मुकय्यद किया, एक शय के मुजाफ होने को मुकय्यद किया था बिकौलिना अपने इस कौल के साथ कि बितकदीर हर्फिल जर्री लि अल्ला यंतकिजा, ताकि कहीं ये टूट ना जाए यानी इस पर एतराज ना हो, बिकौलिना हमारे इस कौल के साथ मररतु बिज़ैदिन फ़इन्ना मररतु मुजाफ़ुन इला ज़ैदिन, इसलिए क्योंकि मररतु जो है वो मुजाफ है इला ज़ैदिन ज़ैद की तरफ बिवासितति हर्फिल जर्री लफ्ज़न, बवास्ते हर्फ जर के लफ्ज़न बैतबार लफ्जों के हर्फ जर लफ्जों में मौजूद है। तो कौन सी इजाफत इसम का खासा है? जो तकदीर हर्फ जर के साथ हो, जिक्र हर्फ जर के साथ न हो, वरना वो तो फेल में भी पाई जाती है। इबारत पे नजर है, तर्जमा करके दिखाओ। फइन्ना मररतु मुजाफुन इला ज़ैदिन, तर्जमा करो, क्योंकि मररतु मुजाफ है किसकी तरफ? जैद की तरफ। देखा आप मररतु का तर्जमा नहीं कर रहे, मालूम हुआ यहां मररतु हाज़ा लफ्ज़ की ताबील में है या ये आलम के दर्जे में है। वहुआ अयिल इस्मु किस्मानी मौरबू व मबनियुन, और वो अयिल इस्मु यानी के इसम क्या बतलाना चाहते हैं? जमीर का मर्जा बतलाना चाहते हैं कि हुआ जमीर किसको राजे? इसम को। कहते हैं वहुआ अयिल इस्मु यानी के इसम जो है किस्मानी दो किस्म पर है, मौरबू व मबनियुन, मौरब है और मबनी है भाई। मौरबों व मबनियों से पहले साहिब जामी ने किस्मानी का लफ्ज निकाला, किस्मानी, इसकी क्या वजह है? याद रखो बेआईन ही यही इश्काल होता था पीछे जहां कलिमा की तकसीम की थी, वही अस्मू व फेलू व हर्फुन, कलिमा जो है इसम है और फेल है और हर्फ है, यही एतराज यहां भी होता है। वह हुआ मौरबू व मबनीयुन, और वह मौरब है और मबनी है। एतराज यह होता है कि यह जो वह है यह जमा के लिए आता है, यह वह जमा के लिए आता है, तो चलो पहले वो समझ लो। वही अस्मू व फ़ेलू व हर्फुन, वो जो कलिमा की तकसीम की थी, और कलिमा जो है इसम है और फेल है और हर्फ है। सवाल कि जो वव है ये जमा के लिए आता है, ये जो वव आतिफा है ये जमा का फायदा देता है, तो इसम फेल और हर्फ इनके बीच में क्या आया? वव, और वव किसका फायदा देता है? जमा का। मालूम हुआ इसम के साथ जमा करो फेल को भी और हर्फ को भी, मतलब एक ही चीज इसम भी हो फेल भी हो हर्फ भी हो तो उसको कलिमा कहेंगे। वही अस्मू व फेलू व हर्फुन, इसम फेल और हर्फ के दरमियान क्या आया? वाव, और वाव किस लिए आता है? जमा के लिए। मालूम है इन तीनों को जमा कर दो एक ही चीज में, तीनों इकट्ठे हो जाएं तो उसके बारे में हम कहेंगे हिया कलिमतुन, ही अस्मू व फेलू व हर्फुन, कलिमा क्या है? एक ही कलिमा इसम भी हो फेल भी हो और हर्फ हो तो उसको कलिमा कहेंगे। तवज्जो है, हिया जमीर किसको राजे? कलिमा को। जरा हिया को हटा दो, कलिमा को ले आओ। अल कलिमा तो इस्मू व फेलू व हर्फुन, कलिमा किसे कहते हैं? इसम फेल और हर्फ को। मालूम और ये इसम फेल और हर्फ इनके बीच में क्या आया?
واو، اور واو کس چیز کے لیے آتا ہے؟ جمع کے لیے. معلوم ہوا تینوں چیزیں جمع ہوں گی تو اس کو کلمہ کہیں گے. الکلمہ تو اسم و فعل و حرف، اسم فعل اور حرف تینوں جمع ہوں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ کلمہ. معلوم ہوا ایک ہی لفظ ہو، وہ اسم بھی ہو فعل بھی ہو حرف بھی ہو، تو اس کو کلمہ کہیں گے. اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہاں واو آیا، اور واو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ جمع کا فائدہ دیتا ہے. تو آپ کو بتلائیں گے کہ بھائی ہاں واو جمع کا فائدہ دیتا ہے، لیکن ایک ہے عطف ایک ہے حمل، ایک ہے عطف ایک ہے حمل. کبھی عطف مقدم ہوتا ہے اور کبھی حمل مقدم ہوتا ہے. توجہ ہے؟ حمل کسے کہتے ہیں؟ حکم لگانا ایک چیز کا دوسری چیز پر. زیدن قائمن، میں نے زید پر قائمن کا حکم لگایا. توجہ ہے؟ زیدن قائمن، یہ قائمن کا میں حکم لگا رہا ہوں کس پر؟ زید پر. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہو، میں قائمن کا حمل کر رہا ہوں زید پر، میں قائمن کا حمل کر رہا ہوں زید پر. تو ایک ہوتا ہے عطف ایک ہوتا ہے حمل، یعنی حکم لگانا. تو کبھی عطف مقدم ہوتا ہے حمل پر اور کبھی حمل مقدم ہوتا ہے عطف پر. تو یہ کہاں ہوگا؟ تو یاد رکھو، ایک ہے تقسیم الشیء الى اجزائہ اور ایک ہے تقسیم الشیء الى جزئیاتہ. شے کی تقسیم اگر اجزاء کی طرف ہو تو عطف مقدم ہوتا ہے، اور اگر شے کی تقسیم افراد کی طرف ہو یعنی جزیات کی طرف ہو تو پھر حمل مقدم ہوتا ہے. جی اپنے سامنے ذرا ایک مثال لکھو، جلدی کیجئے بھائی. اسکن جبین، اسکن جبین لکھو بھائی، اسکن جبین، اسکن جبین. خلن، خا اور لام مشدد ہے، خلن. وعسلن، وعسلن. وماءن، وماءن. جی یہ سکنجبین، یہ کس کو کہتے ہیں؟ سرکہ شہد اور پانی کو ملا لیا جائے تو اس مرکب کا نام سکنجبین ہے. اس مرکب کا کیا نام ہے؟ کیا کیا چیزیں ہیں؟ خلن سرکے کو کہتے ہیں، اور اصل شہد کو، اور ما پانی. سکنجبین کس کا نام ہے؟ سرکہ شہد اور پانی، اور یہ تینوں چیزیں ملیں گی تو پھر ہی وہ سکنجبین کہلائے گی. تو یہ تینوں سکنجبین کی قسمیں ہیں یا یہ اس کے اجزاء ہیں؟ یہ سکنجبین کے اجزاء ہیں. یہ کیا ہیں؟ اجزاء ہیں. یہ تینوں ملیں گے تو سکنجبین بنے گی. تو جب ایک شے کی تقسیم ہو کس کی طرف؟ اجزاء کی طرف. یہ سکنجبین کی میں تقسیم کر رہا ہوں اس کے اجزاء کی طرف، کہ اس میں تین جز ہوتے ہیں، خل عسل اور ما. تو اس وقت اس صورت میں پھر عطف مقدم ہے حمل پر، عطف مقدم ہے حمل پر. کس طرح؟ پہلے عطف کریں گے، عسل کا عطف کس پر کریں گے؟ خلن پر. اور پھر ماؤن کا عطف بھی کس پر کریں گے؟ خلن پر. تو یہ عطف ہوگا، تینوں جڑ جائیں گی، اب کہیں گے کہ یہ ہے سکنجبین، یہ ہے سکنجبین. تو یہاں عطف مقدم ہے، پہلے معطوف اور معطوفن علیہ کو آپس میں جوڑیں گے، اور پھر جوڑنے کے بعد اس سارے مجموعے کا حمل کریں گے کس پر؟ سکنجبین پر. تو کیا مقدم ہے؟ عطف. توجہ بھی ہے کہ نہیں؟ کیا مقدم ہے؟ عطف مقدم ہے کس پر؟ حمل پر. کیوں؟ کیونکہ یہاں اگر حمل پہلے کریں گے، السکنجبین خلن، سکنجبین سرکے کا نام ہے، یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ غلط ہے، سکنجبین سرکے کا نام نہیں، صرف اصل کا حمل کرو. السکنجبین عسلن، سکنجبین شہد کا نام ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے. السکنجبین ماؤن، سکنجبین پانی کا نام ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. دوسری مثال لے لو، چائے. چائے جو ہے دودھ چینی پتی اور پانی کا نام ہے، چائے دودھ چینی پتی اور پانی کا نام ہے. یہ چار چیزیں ملیں گی تو چائے بنے گی. تو یہ چاروں کو پہلے ان کا ایک دوسرے پر عطف کریں گے، جوڑیں گے، اور پھر حمل کریں گے کس پر؟ چائے پر. اگر ایک ایک کا حمل کریں تو بات درست نہیں. چائے پانی ہے، جی یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ गलत है। चाय जो है दूध है, देखो ये बात भी दुरुस्त नहीं। चाय चीनी है, देखो चीनी का हमल भी चाय पर सही नहीं। चाय पत्ती है, ये भी हमल सही नहीं। तो जब भी एक शय की तकसीम हो अज्जा की तरफ, किसकी तरफ? अज्जा की तरफ, तो आतफ मुकदम होता है हमल पर। पहले सबका एक दूसरे पर आतफ करते हैं और फिर हमल करते हैं। तो चाय किसका नाम? दूध, चीनी, पत्ती और पानी। तो इनका एक दूसरे पर आतफ करो, इन सारों को जोड़ दो और फिर सारे मजमुए का हमल कर दो। किस पर? चाय के ऊपर। तवज्जो है, अब हमल सही हो गया। चाय इन सारों के मुरक्कब का नाम है, मजमुए का नाम है। इसी तरह असिकन जबीन खलू व असलू व माउन, उसमें सिर्फ खल का हमल करें। सिकन जमीन सिरके का नाम है, यह बात भी सही नहीं। सिकन जमीन सिर्फ शहद का नाम है, असिकन जमीन असलून, यह हमल भी सही नहीं। बल्कि क्या करना पड़ेगा? पहले आतफ करना पड़ेगा और फिर जब सारे मिल जाएंगे, खलुन व असलुन व माउन, इस सारे मजमुए का फिर हमल करेंगे सिकन जबीन पर, क्योंकि ये सिकन जबीन के अज्जा हैं। तो जब भी एक शय की तकसीम हो किसकी तरफ? अज्जा की तरफ, तो आतफ मुकदम होता है हमल पर। पहले आतफ करते हैं और फिर सारों का मिलाकर हमल करते हैं। बात समझ में आ गई। और जब शय की तकसीम हो जुजियात, यानी अपने अफराद की तरफ, किसकी तरफ? अपने अफराद की तरफ, तो फिर हमल मुकदम होता है आतफ पर। जैसे अलकलिमतु इस्मु व फिअलुन व हर्फुन, यह कलिमा की तकसीम हो रही है, यह इस्म, फेल और हर्फ, यह कलिमा के अज्जा हैं। क्या यह सारे मिलेंगे तो कलिमा बनेगा, या इनमें से हर एक कलिमा की किस्म है? हर एक कलिमा की किस्म है। तो यह कलिमा की तकसीम हो रही है अफराद की तरफ, किस्मों की तरफ, जुजियात की तरफ। समझ में आया? जुजी और फर्द का एक माना है। तो यह कलिमा की तकसीम हो रही है जुजियात की तरफ, यानी अफराद की तरफ। और जब भी एक शय की तकसीम हो अफराद की तरफ, तो वहां हमल मुकदम होता है किस पर? आतफ पर। पहले हमल करोगे फिर आतफ करोगे। तो अलकलिमा तो इस्मु व फेलू व हर्फुन, तीनों का एक दूसरे पर आतफ नहीं करना, वरना तो क्या खराबी लाजिम आएगी? एक ही चीज इसम भी हो, फेल भी हो, हर्फ भी हो, फिर उसको क्या कहेंगे? कलिमा। बल्कि पहले क्या करेंगे? हमल करेंगे। अलकलिमा तो इस्मुन, कलिमा क्या है? कलिमा इसम होता है। वह फेलुन, और कलिमा फेल होता है। वह हर्फुन, और कलिमा हर्फ होता है। अब बात ठीक बन गई। तो जब शय की तकसीम हो इला अज्जा, तो फिर आतफ मुकदम होता है हमल पर। और जब शय की तकसीम हो इला जुजिया, तो हमल मुकदम होता है आतफ पर। बात समझ में आ गई। तो यहां पर भी इसी तरह है। अब देखिए सबक पर, वह हुआ अयलिस्मु किस्मानी मुअरबुन व मबनीयुन, हुआ जमीर किसको राजे? इसम की तरफ। तो इसकी जगह जरा अलिसम ले आओ। अलिस्मु मुअरबुन व मबनीयुन, इसम मुअरब और मबनी है। दरमियान में क्या आया? वाव आया। और वाव किस चीज का फायदा देता है? जमा का। मालूम हुआ एक ही शय मुअरब भी हो और मबनी भी हो, उसको इसम कहेंगे। तो जवाब क्या गुजर गया? कि यह इसम की तकसीम हो रही है किसकी तरफ? अज्जा। इसम की तकसीम हो रही है जुजियात की तरफ हो रही है, ना कि अज्जा की तरफ। लिहाजा जब ये जुजियात की तरफ तकसीम है, तो यहां हमल मुकदम है आतफ पर। दोनों को मिलाकर नहीं फिर हमल करेंगे, बल्कि यूं होगा कि अलिस्मु मुअरबुन व मबनीयुन, इसम मुअरब होता है, देखो हमल कर दिया, इस और इसम मबनी होता है। अब बात ठीक बन गई, बात समझ में आ गई। देखिए अब कहते हैं, वह हुआ अलिस्मु किस्मानी, और वो यानी कि इसम जो है किस्मानी। किस्मानी निकाल कर क्या बतलाना चाहते हैं साहिब जामी? कि जो आगे आ रही हैं मुअरबुन व मबनीयुन, ये इसम की किस्में हैं, ये इसम के अज्जा नहीं हैं। तो ये तकसीम उशय इला जुज़ियात की कबील से है, और इसके अंदर क्या मुकदम होता है? हमल मुकदम होता है आतफ पर। या तो ये बतलाना चाहते हैं, या दूसरा जवाब दे रहे हैं इसी का, कि भाई यहां पर मुअरब और मबनी ये हुआ की खबर है ही नहीं, ये हुआ की खबर
हुआ से क्या मुराद है? इसम ना, ये अल इस्मु मुअरबु व मबनीयुन, यहां तो इश्काल लाजिम आता था, वो इश्काल जो मैंने जिक्र कर दिया और जवाब भी बतला दिया कि यहां पर हमल मुकद्दम है किस पर? अतः पर। साहिब जामी या तो किस्मानी कहकर इसी जवाब की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये जो आगे दो आ रही हैं ये दो किस्में हैं इसम की, और जब किस्म की तरफ तकसीम हो तो वहां हमल मुकद्दम होता है, तो आप भी क्या करना, हमल को मुकद्दम रखना अतः पर। या वो ये बतलाना चाहते हैं, दूसरा जवाब देना चाहते हैं कि मुअरबु व मबनीयुन इसको खबर बनाओ ही ना ताकि इश्काल लाजिम आए, बल्कि खबर महजूफ है किस्मानी। खबर क्या है? किस्मानी, ये खबर है, वह हुआ किस्मानी, और वो इसम दो किस्म पर है, तवज्जो है। तो अब ये किस्मानी को खबर बना लो, और मुअरबु व मबनीयुन इसको इससे बदल बना लो। क्या बना लो? बदल बना लो। और आप जानते हैं कि बदल और मुबदल मिनहू का एराब एक होता है। किस्मान ये खबर है, मरफू है, तो मुअरबुन व मबनीयुन ये भी मरफू हैं, तो ये बदल हैं, किस्मानी है, मुबदल मिनहू, दो किस्में हैं। कौन सी दो किस्में? मुअरबुन व मबनीयुन, मातूफ और मातूफ अलैह को मिलाओ और इसको बदल बना दो। बात समझ में आ गई? ये दो किस्में हैं। एक तरकीब कि ये मुअरबुन व मबनीयुन को क्या कर दो, किस्मानी से बदल बना दो। दूसरी तरकीब, इसको बदल ना बनाओ, इनके लिए अलग मुबतदा महसूफ निकालो। आई हुमा मुअरबुन व मबनीयुन, अल इस्मु किस्मानी, इसम की दो किस्में हैं भाई, वो कौन सी किस्में हैं? हुमा मुअरबुन व मबनीयुन, वो दो किस्में जो हैं मुअरब और मबनी हैं। तो हुमा मुबतदा और मुअरबुन व मबनीयुन मातूफुन अलैह और मातूफ मिलकर यह उसकी खबर। तवज्जो है? यह दोनों के लिए अलग अलग मुबतदा निकाल लो भाई, कि वो दो किस्में हैं, अहदुहुमा मुअरबुन वसानीहिमा मबनीयुन। अहदुहुमा महजूफ निकाला, ये मुबतदा और मुअरबुन उसकी खबर, तवज्जो है। और सानीहिमा ये दूसरा मुबतदा और मबनीयुन उसकी खबर उसकी। तो दोनों के लिए अलग अलग मुबतदा महजूफ निकाल लो, या दोनों के लिए इकट्ठा एक ही महजूफ मुबतदा निकाल लो, या इन दोनों को बदल बना दो किससे? किस्मानी से। तो दो जवाब हो गए। क्या जवाब? कि किस्मानी क्यों लेकर आए साहिब जामी, या तो वो बतलाना चाह रहे हैं कि ये तकसीम तकसीमुशय इलल अकसाम है, तकसीमुशय इलल अज्जा नहीं है, लिहाजा यहां पर हमल मुकद्दम है अतफ पर। या वो ये बतलाना चाहते हैं कि उसको खबर बनाओ ही ना, बल्कि खबर किसको बनाओ? किस्मानी महजूफ ये खबर है, और वो इसके लिए बदल है, या उसके लिए अलग मुबतदा महजूफ निकाल लें। दोनों के लिए चाहे एक ही मुबतदा महजूफ निकालें, चाहे दोनों के लिए अलग अलग निकाल लें। तो कहते हैं वह हुआ आइल इस्म किस्मानी, और इसम जो है वह दो किस्म पर है, मुअरबुन व मबनीयुन, मुअरब है और मबनी है, मुअरब और मबनी। लिअन्नहु ला यखलु इम्मा अन यकूना मुरक्कबन मा गैरिही औला। अब यहां से वजह हसर जिक्र कर रहे हैं, वजह हसर जिक्र कर रहे हैं भाई। पहले जरा अगला मतन देख लें, मतन देख लें। फल मुअरबुल मुरक्कबुल लजी लम युशबिह मबनीयल असली। मुअरब जो है वो इसम है जो मुरक्कब हो, जिसको जोड़ा गया हो। अल्लजी लम युशबिह मबनीयल असली, जो कि मबनीयल असल के मुशाबे नहीं है, मबनीयल असल के मुशाबे नहीं है। देखो मबनीयल असल तीन चीजें हैं, फेल माजी, फेल अमर हाजिर और तमाम हरूफ। फेल माजी, फेल अमर और तमाम हरूफ, देखो इनमें इसम एक भी नहीं है, फेल माजी, फेल अमर और तमाम हरूफ, तो इन तीनों को कहते हैं मबनीयल असल। तो इसम जो मबनी होता है उनकी इन तीनों में से किसी के साथ मुशाबहत आ जाती है, जिसकी वजह से इसम भी मबनी बन जाता है भाई। तो मुअरब किसे कहते हैं? कि वो मुरक्कब हो, यानी किसी के साथ जोड़ा गया हो तरकीब में। तवज्जो है? तरकीब में, और याद रखना तरकीब से मुराद ऐसी तरकीब है जिसमें उसका आमिल भी साथ हो, उसका आमिल भी साथ हो, और नीस वो मबनीयुल असल के मुशाबे भी ना हो। तो दो कैदें आ गई भाई, दो कैदें आ गई मुअरब की तारीफ में। क्या? एक क्या? कि वो तरकीब में वाके हो, जोड़ा गया हो। दूसरी कैद क्या, मबनी असल के मुशाबे ना हो। तवज्जो से भाई, मुअरब की तारीफ की दो चीजों के साथ, नंबर एक क्या, वो तरकीब में जोड़ा गया हो, तरकीब में वाकई हो वो इसम, और दूसरी बात वो मबनी असल के मुशाबे ना हो। एक शर्त है वजूदी, एक शर्त है आदमी, तरकीब में होना चाहिए और मबनी असल के मुशाबे नहीं होना चाहिए। तो एक शर्त क्या है, वजूदी, उसका होना जरूरी, और वो क्या, तरकीब में होना जरूरी है, और एक शय का न होना जरूरी आदमी है, और वो क्या है कि मबनी असल के मुशाबे न हो। याद रखो साहिब काफिया के नजदीक अकेला लफ्ज जैद आप कहें, जैद ये मबनी है, मौरब नहीं। साहिब काफिया का मजहब बयान कर रहा हूं, साहिब काफिया के नजदीक अकेला लफ्ज आप क्या कहें, जैद कहें, जैद भाई, जैद वैसे तो मौरब है, जानी जैद, उन देखो इस पर रफा आ रहा है, लेकिन जब ये अकेला हो जैद तो साहिब काफिया के नजदीक ये मौरब नहीं है बल्कि मबनी है, क्योंकि मौरब के लिए उनके यहां दो शर्तें हैं, एक तो वो तरकीब में वाके हो और तरकीब भी ऐसी हो जिसमें उसका आमिल भी साथ मौजूद हो और साथ वो मबनी उल असल के मुशाबे भी ना हो, दोनों चीजें होनी चाहिए। और जैद, जैद तरकीब में वाके है, इसके साथ कोई और लफ्ज जुड़ा हुआ है नहीं, ये तो अकेला है तो ये तरकीब में वाके नहीं है तो ये मौरब नहीं। तो अकेला लफ्ज जैद जो है ये साहिब काफिया के नजदीक मबनी है, क्योंकि मौरब के लिए कितनी शर्तें हैं, दो शर्तें, पहली शर्त क्या, तरकीब में हो, और ये तो तरकीब में ही नहीं है, अकेला लफ्ज जैद है तो ये उनके नजदीक मबनी है, और तरकीब भी ऐसी कि उसके अंदर उसका आमिल भी मौजूद हो भाई, और जैसे गुलाम जैदीन, गुलाम, ये गुलाम जैदीन के अंदर जो लफ्ज गुलाम आया ये भी साहिब काफिया के नजदीक मबनी है, गुलाम जैदीन में जो गुलाम का लफ्ज आया ये भी साहिब काफिया के नजदीक मबनी है, क्यों, क्योंकि अभी तो बताया मौरब के अंदर दो शर्तें हैं, एक तो ये कि तरकीब में हो और तरकीब भी किस किस्म की हो, कि उसमें उसका आमिल भी हो, और दूसरी शर्त क्या, मबनी उल असल के मुशाबे न हो। तो ये गुलाम जैदीन, इसके अंदर गुलाम का लफ्ज तरकीब में तो है, जैद के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके अंदर गुलाम का आमिल नहीं है। गुलाम पर आप क्या पढ़ना चाहते हैं, रफा, रफा खुद ब खुद आता है या आमिल की वजह से आता है, आमिल की वजह से तो रफा नहीं पढ़ सकते। नसब पढ़ना चाहते हैं, नसब खुद आता है या आमिल की वजह से, आमिल की वजह से, आमिल तो कोई नहीं है तो नसब भी नहीं पढ़ सकते, और जर भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि कोई आमिल जर भी नहीं है। तो कैसे पढ़ेंगे, गुलाम जैदीन, इसमें गुलाम क्या है, मबनी है साहिब काफिया के नजदीक, तरकीब में तो वाके है लेकिन साथ इसका आमिल नहीं। हां आप इसको गुलामु जैदीन भी पढ़ देंगे तो ये जो आपने मीम पर पेश पढ़ा ये वैसे हरकत है एराब नहीं, तो ये साहिब काफिया के नजदीक मबनी ही है भाई, क्योंकि मौरब किसे कहते हैं, वो जो तरकीब में हो और तरकीब भी ऐसी हो जिसमें उसका आमिल हो भाई। हां अलबत्ता गुलाम जैदीन इसमें जो जैद है यह मौरब है साहिब काफिया के नजदीक, क्योंकि ये तरकीब में भी वाके है और तरकीब भी ऐसी है जिसमें आमिल भी मौजूद है, ये मुजाफ इसको जर दे रहा है, और नीज ये मबनी उल असल के मुशाबे भी नहीं है, तवज्जो है, तो लिहाजा ये मौरब है। तो गुलाम जैदीन में गुलाम का लफ्ज ये मबनी है साहिब काफिया के नजदीक, और जैद का लफ्ज ये मौरब है भाई, नीज वो लफ्ज मबनी उल असल के मुशाबे नहीं होना चाहिए, यानी फेले माजी, फेले अमर और हर्फ के मुशाबे नहीं होना चाहिए। और आपको आगे चलकर बताएंगे ये मुशाबेहत से मुराद मुनासिबत है, और खास मुनासिबतें मुराद हैं, क्या मुराद हैं, खास मुनासिबतें मुराद हैं, जैसे देखो, जैसे मसलन इसमें इशारा और इसमें मौसूल, ये दोनों हर्फ के मुशाबे हैं इसलिए ये दोनों भी मबनी हैं, हर्फ तो है मबनी उल असल और जो उसके मुशाबे हो जाएगा वो भी क्या बन जाएगा, मबनी, इसमें इशारा भी हर्फ के मुशाबे, इसमें मौसूल भी हर्फ के मुशाबे। भाई किस तरह हर्फ के मुशाबे, कहते हैं जिस तरह हर्फ अपना माना अदा करने में मोहताज है कि इसके साथ और कलिमे जुड़े हैं फिर ये अपने माना पर दलालत करता है, वैसे दलालत नहीं करता, इसी तरह इसमें इशारा भी मुशारो निलय का मोहताज है। भाई इसमें इशारा हाजा, ये तो मैं किताब की तरफ भी कर सकता हूं हाजा इशारा, कलम की तरफ भी कर सकता हूं, तो जब तक मैं इशारा नहीं करूंगा आपको क्या पता चलेगा हाजा से क्या मुराद है, तो हाजा के जरिए क्या जरूरी, हाजा इसमें इशारा है इसके लिए मुशारुन इले होना जरूरी, तो या हाथ से इशारा करना पड़ेगा इशारा हिस्सिया,
या लफ्जों के अंदर मैं कहता हूं मसलन हाजल किताब, ये वाली किताब, तो लफ्जों में मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं? मुशारुन लिले का पता चल रहा है आपको या नहीं? किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं? किताब की तरफ। और कभी लफ्जों में तो मैं लफ्ज अल किताब नहीं लाता, सिर्फ हाथ से इशारा कर देता हूं हाजा। अब भी आप समझ गए कि हाजा से क्या मुराद है? ये किताब मुराद है जिसकी तरफ मैंने हाथ से इशारा किया। तो हाजा के लिए हमेशा क्या चाहिए? मुशारुन इलैह। और वो मुशारुन इलैह, वो मुशारुन इलैह लफ्जों में भी जिक्र हो सकता है और हाथ वगैरह के जरिए भी उसकी तरफ इशारा हो सकता है। तो इस मालूम हुआ इसमें इशारा का माना समझ में ही नहीं आएगा जब तक मुशारुन इलैह का पता ना चल जाए। और मुशारुन इलैह का पता कभी लफ्जों से चलता है और कभी इशारे हिस्सिया वगैरह से, या कोई करीना होता है वो बतलाता है। तो मालूम हुआ इसमें इशारा किसका मोहताज? मुशारुन इलैह का। उसके बगैर उसका माना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हाजा का माना तो है ये, ये तो दुनिया की कोई भी चीज हो सकती है जो भी मुजक्कर है। तो जब तक इसके लिए मुशारुन इलैह नहीं आएगा, इसका माना समझ में नहीं आएगा कि इस हाजा से क्या मुराद है। और इसी तरह इसमें मौसूल है, इसमें मौसूल के लिए आप जानते हैं आगे सिला जरूर चाहिए। जब तक इसमें मौसूल के साथ सिला नहीं मिलेगा, इसमें मौसूल का माना आपको समझ में नहीं आएगा। जा अल्लज़ी, आया वो जो के, आया वो जो के, कुछ बात समझ में आई? नहीं। आगे सिला लाऊंगा, अब बात आपको समझ में आएगी। जा अल्लज़ी ज़ारबा का, आया वो आदमी जिसने आपकी पिटाई की थी। अब देखो बात समझ में आ गई, अल्लज़ी के आगे ज़ारबा का, ये मैंने सिला जोड़ दिया, अब बात पूरी हो गई। तो मौसूल का माना समझ में नहीं आता जब तक उसके साथ सिला जोड़ दें। तो इसमें मौसूल सिले का मोहताज अपना माना अदा करने में, और इसमें इशारा मुशारुन इलैह का मोहताज अपना माना अदा करने में। तो ये किसकी तरह हो गए? हर्फ की तरह हो गए। हर्फ भी अपना माना अदा करने में और कलिमों का मोहताज है। तो जब ये हर्फ के मुशाबे हुए, वो तो था मबनीउल असल, तो ये भी क्या बन गए? मबनी बन गए। इसलिए इसमें इशारा मबनियात की कबील से है, गैर इसमें गैर मुतमक्किन है। इसीलिए इसमें मौसूल जो है वो मबनियात में से है, वो गैर मुतमक्किन है। भाई बात समझ में आ गई? तो मालूम हुआ साहिब काफिया के नजदीक मुअरब किसे कहेंगे? वो इसम जो तरकीब में वाके हो और तरकीब भी ऐसी हो जिसमें उसका आमिल भी हो और नीज वो मबनीउल असल के मुशाबे भी ना हो। और हर मुशाबेहत नहीं मुराद, खास मुशाबेहतें मुराद हैं। अच्छा, अब वजह हसर जिक्र करने लगे हैं। वजह हसर देखिए भाई किताब पर कहते हैं लिअन्नहु ला यखलु इम्मा अन यकूना मुरक्कबन मा गैरिही औला। वजह हसर कहते हैं लिअन्नहु ला यखलू, इसलिए क्योंकि इसम खाली नहीं है। इम्मा यकूना मुरक्कबन मा गैरिही औला, या तो वो इसम के गैर के साथ मुरक्कब होगा या मुरक्कब नहीं, गैर के साथ जोड़ा गया होगा या गैर के साथ नहीं जोड़ा गया होगा। अगर नहीं जोड़ा गया वो क्या? मबनी। और अगर जोड़ा गया है फिर इम्मा अयुष बिहा मबनी अल असली औला, फिर वो मबनीउल असल के मुशाबे होगा या मुशाबे नहीं। अगर मबनीउल असल के मुशाबे है तो भी मबनी होगा, और अगर मुशाबे नहीं तो फिर वो मुअरब होगा। वजह हसर समझ में आई? फिर देखो, इधर देखिए कि इसम या तो तरकीब में वाके होगा या वाके नहीं, दो सूरतें हो गई। फिर तरकीब में जब वो वाके हो गया फिर दो सूरतें हैं, या तो वो मबनीउल असल के मुशाबे होगा या मुशाबे नहीं होगा। तो तीन सूरतें बनती हैं। अगर वो तरकीब में ना हो, तरकीब में ना हो तो भी मबनी, और अगर तरकीब में वाके है लेकिन मबनीउल असल के मुशाबे है तो भी वो मबनी है, और अगर तरकीब में वाके है और मबनीउल असल के मुशाबे नहीं है तो वो मुअरब है। बात समझ में आ गई? ये आप वजह खसर भी दोबारा देखो, इसको भी जिक्र करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि मुअरब वो है जिसमें दोनों शर्तें पूरी हो, तरकीब में भी वाके हो और मबनीउल असल के मुशाबे भी ना हो, वो मुअरब है। और बाकी सूरतें जो हैं वो मबनी की हैं। भाई कहते हैं लिअन्नहु ला यखलु इम्मा अन यकूना मुरक्कबन मा गैरिही औला, इसलिए क्योंकि इसम वो खाली नहीं है, या तो वो गैर के साथ मुरक्कब होगा या नहीं होगा। वल अव्वल, और पहला यानी वो जो मुरक्कब है गैर के साथ, इम्मा अयुष भी हम मबनी अल असली औला, वो या तो मबनी उल असल के मुशाबे होगा या नहीं होगा। वहादा, और ये अनिल मुरक्कबल लदी लम युष भी मबनी अल असली, यानी वो मुरक्कब जो मबनीउल असल के मुशाबे नहीं है, हुवल मुअरब, वो मुअरब है, वमा अदाहू, और इसके अलावा जो है, आनी गैरल मुरक्कबी, यानी वो जो मुरक्कब ही नहीं है, तरकीब में ही वाक़े नहीं है। इसी तरह वल मुरक्कबल लदी युशबिह मबनीउल असली, और इसी तरह वो मुरक्कब जो मबनीउल असल के मुशाबे है, मबनीयुन, ये दोनों क्या हैं, मबनी है, जो तरकीब में वाकई नहीं वो भी मबनी, और जो मबनी उल असल के मुशाबे है वो भी मबनी है।
चलिए बस करें, बस भाई बात अच्छी तरह समझ में आ गई, हल हो गया सारा। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।